অষ্টোত্তরশত শ্রী শ্রীমদ্ অভয় চরণারবিন্দ ভক্তি বেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কি জয়। অনন্ত কোটি বৈষ্ণব বৃন্দ কি জয়। নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কি জয়। প্রেম সে কহো শ্রী কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্ত বৃন্দ কি জয়। শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ গো গোপীনাথ শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরি গোবর্ধন কি জয়। শ্রী বৃন্দাবন ধাম কি জয়। শ্রী মথুরা ধাম কি জয়। শ্রী জগন্নাথপুরী ধাম কি জয়। শ্রী মায়াপুর নবদ্বীপ ধাম কি জয়। গঙ্গা মাই কি জয়। যমুনা মাই কি জয়। ভক্তি দেবী কি জয়। তুলসী মহারানী কি জয়। হরিনাম সংকীর্তন কি জয়। সমবেত ভক্ত বৃন্দ কি জয়। গৌর প্রেমানন্দে হরে হরে। অল গ্লোরিজ টু দ্য অ্যাসেম্বল ডিভোটিজ। অল গ্লোরিজ টু শ্রী গুরু অ্যান্ড শ্রী গৌরাঙ্গ। অল গ্লোরিজ টু শ্রীল প্রভুপাদ। নমঃ বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তি বেদান্ত স্বামীনিতি নামিনে নমস্তে সরস্বতী দেবে গৌরবাণী প্রচারিণে নির্বিশেষ শূন্যবাদী পশ্চাৎ দিশত। হরে কৃষ্ণ। সব বলি হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ। ইয়ে হরে কৃষ্ণ কা মতলব ক্যা হ্যাঁ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে। ইয়ে আপ সব জানতে কোন জানতে ইয়ে ইয়ে ক্যা হ্যাঁ। হরে কৃষ্ণ মে হাত উঠানে বলা থা। ওকে মহামন্ত্র কা মতলব ক্যা হ্যাঁ। মহামন্ত্র কা মতলব ক্যা হ্যাঁ কোন জানতে হ্যাঁ। আচ্ছা আচ্ছা মাতাজি আপ বলিয়ে মহামন্ত্র কা মতলব। আচ্ছা মাতাজি কহ রহে হ্যাঁ মহামন্ত্র জপ করনে সে মন কা শান্তি মিলতা হ্যাঁ। বহুত আচ্ছা। অর কোন কুছ বোলেঙ্গে কিসি কা অর কোই বিচার হ্যাঁ। আপকা বিচার ক্যা হ্যাঁ। মহামন্ত্র জপ করনে সে বিঘ্ন বিনাশ হো জাতা হ্যাঁ। ওকে বহুত আচ্ছা। অর কুছ হ্যাঁ অর কোন বোলেঙ্গে হ্যাঁ। রাঘব পণ্ডিত তুম বলো।
আপ বতাতে হ্যাঁ মহা কা মতলব বড়া আর মন্ত্র কা মতলব হোতা হ্যায় জো
শুরু সে বলো পহলে সে সব সুনা নেই।
হরে কৃষ্ণ গুরু মহারাজ জি। মহামন্ত্র জেসা কি আপ বতাতে হ্যাঁ মহা অর্থাৎ বড়া বহুত বিশাল আর মন্ত্র অর্থাৎ মন কো জো মন কা ত্রাণ জো হে মন কো জো কষ্ট হে ও কষ্ট কো হরণ কর দেতা হে ও হোতা হে মন্ত্র। তো ইয়ে হে বহুত বড়া মন্ত্র আর ইসকা অভিপ্রায় আগর আপ কহে তো বলু।
হ্যাঁ তো বতাও মহামন্ত্র কা মতলব ক্যা হ্যাঁ।
হ্যাঁ ইসকা অভিপ্রায় হে কি
হে ঠিক হ্যাঁ। মহামন্ত্র কা মহামন্ত্র ইয়ে দো শব্দ কা হ্যাঁ সন্ধি হ্যাঁ। হ্যাঁ তো মহা কা মতলব হ্যাঁ মহান হ্যাঁ বড়া আর মন্ত্র কা মতলব হ্যাঁ জো মন কো ত্রাণ করতা হ্যায় উসকো মন্ত্র কহা জাতা হ্যায় মনং ত্রায়তে ইতি মন্ত্র। তো মহামন্ত্র কা মতলব হ্যায় জো মন্ত্র সবসে বড়া মন্ত্র হ্যায় সারে মন্ত্র মে সে সবসে মহান হ্যায় ইয়ে মহামন্ত্র। আচ্ছা তুম পহলে বোলা মন কা জপ করনে সে মন্ত্র জপ কর মন্ত্র জপ করনে সে মন কা ত্রাণ হোতা হ্যায় হ্যাঁ। তো আচ্ছা তো মন কা ত্রাণ হোনে সে ক্যা হোতা হ্যায় ইয়ে মাতাজি দো মাতাজি কুছ বোলা হ্যায় মন কা ত্রাণ হোনে সে ক্যা হোতা হ্যায় এক তো শান্তি মিলতা হ্যায় और माता जी बोले सब विघ्न दूर हो जाता है, तो महामंत्र ये सब सही बात है। बल्कि महामंत्र का सबसे बढ़िया प्राप्ति क्या है, प्रधान लाभ क्या होता है, तुम बताओ। उनको माइक्रोफोन दे दो, बैठ के ही बोलो।
हाँ, भगवान की प्राप्ति,
भगवान की कृष्ण प्राप्ति होता है। बहुत अच्छा, कृष्ण को प्राप्ति होता है। कृष्ण का प्राप्ति होने से क्या होता है, आप पीछे जो बैठे हैं बताइए, कृष्ण को प्राप्ति होने से क्या होता है?
मोक्ष प्राप्त होता है।
अच्छा, मोक्ष का मतलब क्या है?
परमात्मा का अपनी आत्मा से मिलन,
परमात्मा से आपसे मिला देना। अच्छा ठीक है, तो ये जो आपका विचार, हाँ ठीक है ठीक है, अच्छा इसको हम चर्चा बाद में करेंगे। महामंत्र, मंत्र से हमारे, जैसे राघव पंडित जी बोले हैं, मंत्र जपने से, मंत्र का उच्चारण करने से, मंत्रों का ध्यान करने से मन को त्राण होता है। तो मन, अब हम विचार करेंगे मन का काम क्या है, मन क्या करता है, मन क्या करता है, मन का कार्य क्या है। मन का कार्य है हमारे सारे चेतना को इस भौतिक जगत के प्रति, भौतिक जगत के विषय के प्रति ले जाना। मन एक इंद्रिया है, मन एक इंद्रिया है। हमारे कितने इंद्रिया हैं? पांच इंद्रिया, पांच है बाहर का। वो पांच इंद्रिया क्या है? आंखें, कान, नाक, जीभा और त्वचा। ये पांच इंद्रिया है। इंद्रिया के द्वारा क्या होता है? अनुभव होता है, अनुभूति होता है। जैसे आंखें दर्शन करता है, कान शब्दों को ग्रहण करता है, सुनता है, नाक घ्राण ग्रहण करता है, जीभा स्वाद आस्वादन करता है, और त्वचा स्पर्श करता है। इसके द्वारा हमारे, इस अनुभूति के द्वारा हम इस भौतिक जगत को अनुभव कर रहे हैं। जैसे आंखों के द्वारा हम देख रहे हैं, जिसको आंखें नहीं है वो कुछ भी नहीं देख सकेंगे, जिसका कान नहीं है वो नहीं सुन सकेंगे, जिसका नाक नहीं है वो घ्राण नहीं कर सकेंगे, जिसका जीभा नहीं है वो स्वाद आस्वादन नहीं कर सकेंगे, और जिसको त्वचा नहीं है वो स्पर्श नहीं कर सकेंगे। हमारे जितने सारे ज्ञान या अनुभूति के द्वारा प्राप्त जो उपलब्धि, वो इंद्रिया के द्वारा होता है। और इंद्रिया भी कैसे ग्रहण करता है? जब उसके साथ मन जोड़ा होता है ना, जब मन युक्त होता है इंद्रिय के साथ, तब उसका ग्रहण होता है, उस अनुभूति का उपलब्धि होता है। जैसे आंखें हम देखते हैं, कभी कभी आंखें खुला हुआ है, सामने कुछ कोई खड़ा हुआ है, बल्कि उनको हम नहीं देख सकते हैं, देख रहे हैं, क्यों? मन और कहीं है। मन अगर, आंखें खुला होते हुए भी अगर मन कहां और कहीं होगा तो हम दर्शन नहीं कर सकेंगे। वैसे ही शब्द है, कान भी है, अगर मन उसके साथ युक्त नहीं हुआ तो उसको ग्रहण नहीं होता है। तो वैसे हम देख सकते हैं कि अनुभूति का ग्रहण कैसे होता है, जब मन उसके साथ, इंद्रिया के साथ युक्त रहता है। इंद्रिय के साथ मन का युक्त रहने का मतलब क्या है? मन भी एक इंद्रिय, और एक इंद्रिया है। मन कौन सी इंद्रिया है? मन है अंतरेंद्रिय। ये पांच जो है, चक्षु, कर, आंखें, कान, नाक, जीभा, त्वचा, ये पांच जो है, ये है बाहर, बहिरेंद्रिय, बाहर के इंद्रिय, और मन है अंतरेंद्रिय, अंदर का इंद्रिय। और मन का काम क्या है? मन का काम है चेतना को बाहर ले जाना। चेतना क्या है? हमारे जो जो स्थिति का उपलब्धि, जहां हम हैं उस स्थान और उस विषय का जो उपलब्धि है उसे, वो है चेतना। जैसे हम जब सो जाते हैं तब हमारा चेतना रहता है नहीं, चेतना तब नहीं रहता है। तब पता लगता है पास में कोई है या नहीं, सामने कोई कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं। तो ये सारे ये चेतना के कारण हमारा उपलब्धि होता है। और ये चेतना कहां से आता है, चेतना का उद्भव कहां से होता है? हाँ, चेतना का उद्भव आप सब जरूर जानते होंगे। जो जानते हैं हाथ उठाइए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, आप बोलिए माता जी। वेरी गुड। चेतना का चेतना का उद्भव आत्मा है, आत्मा से चेतना का उद्भव होता है। वैसे जहां पर हम चेतना देखते हैं तो हमें समझना होगा कि वहां आत्मा है। जैसे एक पौधे में चेतना है, पौधे को चेतना है, तो पौधे का चेतना कहां से आ रहा है? आत्मा से आ रहा है। एक कीड़े का चेतना है कहां से आ रहा है? आत्मा से। एक चिड़िया का चेतना है कहां से आ रहा है? एक शेर का चेतना है ये जहां पर चेतना है वहां पर ही हमें समझना होगा कि आत्मा है। और चेतना का जो चेतना का जो प्रकाश ये आत्मा का स्थिति से होता है। जैसे वो स्थिति कहाँ होता है, आत्मा कहाँ है? शरीर में। जैसे ये एक पौधे का भी शरीर है, पौधे का शरीर है, पौधे का पौधे शरीर है, पेड़ का पेड़ शरीर है, एक कीड़े का कीड़े शरीर है, ये सारे शरीर, बल्कि शरीर में कौन है? आत्मा है। जब तक आत्मा है तब शरीर में जीवन है। जब आत्मा शरीर छोड़ के चला जाता है तो क्या होता है? आत्मा शरीर छोड़ के जब चला जाता है तो चेतना का शरीर का मृत्यु होता है। ये क्या कोई कठिन विचार है? ये जो विचार हम कर रहे हैं ये क्या कठिन, कोई कठिन विचार है ना? सरल है। और ये विचार क्या हमारा है या आपका है? ये विचार सत्य है, चाहे हम माने या ना माने, इसको हम ग्रहण करें या ना करें। बल्कि अगर हम बोलेंगे कि आत्मा नहीं है बल्कि फिर कभी ना कभी मेरा मृत्यु होगा, हम अगर बोलेंगे कि मेरा आत्मा आत्मा कहकर कुछ नहीं है, बल्कि आत्मा जब शरीर छोड़ के चला जाएगा तो ये शरीर लेके आप क्या करेंगे? इसको निकाल देंगे और हम क्या करते हैं, इस शरीर को जला देते हैं। देखिए, जो शरीर को हम इतना सुंदर रूप से देखभाल कर रहा था इतने साल तक, 50, 60, 70, 80 साल तक जो शरीर को कितना हम ये किया, उसको देखभाल किया, वो शरीर जब मृत्यु होता है तब एक हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी वो शरीर को घर से निकाल देते हैं और जितना जल्दी सके जला देते हैं। क्यों? क्योंकि ये शरीर का अब कोई मूल्य नहीं है। तो ये शरीर का मूल्य क्यों है, ये शरीर का इतना कीमत क्यों है? आत्मा है। जब तक आत्मा रहता है तब तक शरीर का कितना कीमत है, बल्कि जब आत्मा शरीर छोड़ के चला जाता है वो शरीर का कोई भी मूल्य नहीं रहता है। केवल मूल्य ही नहीं रहता है, शरीर सड़ने लगता है। तो ये जो विचार है ये सही विचार है, ये कोई साधारण मन की कल्पना नहीं है, ये विज्ञान है, ये एक विज्ञान है, विशेष ज्ञान। तो ये शरीर में जब आत्मा रहता है, आत्मा ये शरीर को केंद्र बनाकर ये कार्य करते हैं इस भौतिक जगत में। बल्कि ये असल बात ये है कि भौतिक जगत भौतिक है, यहाँ के सब कुछ भौतिक है। बल्कि आत्मा क्या भौतिक है या आत्मा आध्यात्मिक है, इसका सही शब्द होगा, सही संज्ञा होगा, आत्मा चिन्मय है। ये जो आध्यात्मिक शब्द आया है ये आत्मा के कारण आया है, अधि आत्मिक, आत्मा को केंद्र करके जो कुछ है वो है आध्यात्मिक, अधि आत्मिक। और इस जगत है भौतिक, तो आत्मा क्या इस भौतिक जगत का वस्तु है? हाँ, आत्मा इस भौतिक जगत का वस्तु नहीं है। आत्मा और कहां से आया है, और कहीं से आया है? तो ऐसे आत्मा के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो जैसे किसी विषय में अगर हम जानना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है? हाँ, हमें किताबें पढ़ना होता है ना। किसी भी विषय में अगर हम सही रूप से जानना चाहते हैं तो ग्रंथ के माध्यम वो ज्ञान हमें प्राप्त होना होता है। तो आत्मा के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो आत्मा के विषय में कोई ग्रंथ है आत्मा के बारे में जहां बताया गया है बहुत सुंदर रूप से, बहुत गंभीर रूप से? कौन से ग्रंथ हैं? भगवद गीता आदि शास्त्र। भगवद गीता तो सबसे बेहतर है, क्योंकि सारे हमारे इस आत्मा के विषय में जितने सारे ज्ञान हैं उसका सार निचोड़ इस भगवद गीता में दिया गया है। और कौन दिए हैं? स्वयं भगवान दिए हैं। भगवान तो यहां देखिए एक विचार हमको करना होगा, ये हमारा मन में आया क्योंकि आप जो बैठे हैं आप बोले हैं आत्मा के परमात्मा के साथ मिलना जीवन ये मंत्र का उद्देश्य है या मोक्ष का है उद्देश्य है। तो यहां हम एक विचार करना जरूरी है कि आत्मा और भगवान और परमात्मा इनमें क्या कुछ अंतर है? है और नहीं भी है। ये अंतर समझना जरूरी है। भगवान शब्द का मतलब क्या होता है? भग जिसके पास है वो भगवान है। जैसे बलवान, कौन बलवान है? जिसके पास बल है। धनवान, जिसके पास धन है। गुणवान, तो जिसके पास भग है, हाँ, जिसके पास भग है वो क्या है, वो कौन है? वो है भगवान। तो ये भग शब्द का मतलब क्या होता है? अच्छा बताओ तुम, भगवान भग शब्द का मतलब क्या है? केवल ऐश्वर्य? छह प्रकार के ऐश्वर्य। वो छह प्रकार के ऐश्वर्य हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्य श्रिय ज्ञान वैराग्यश्चैव शन्नां इति भगांगान। भग का छह अंग है। भग शब्द का मतलब है छह। वो छह क्या है? ऐश्वर्यस्य समग्रस्य, समग्र, समग्र मतलब पूर्ण, सारे ऐश्वर्य जिनके पास है। वीर्य, वीर्य का मतलब है शक्ति। ज्ञान का मतलब श्री, श्री का मतलब क्या है? सुंदरता, यश और वैराग्य, त्याग। ये छह जिनमें पूर्ण तरह, पूर्ण रूप से जिनमें है समग्र ऐश्वर्य, समग्र वीर्य, समग्र श्री, समग्र ज्ञान, समग्र यश, समग्र त्याग, वो है भगवान। तो ऐसे कोई किसी को आप जानते हैं जिसके पास सारे संपदा है, सारे ऐश्वर्य हैं? कोई किसी को जानते हैं आप? हाँ? और जिसके पास सारे वीर्य हैं? इस भौतिक जगत में ऐसा कोई है? नहीं, बल्कि ऐसा कोई है जिसके पास समग्र ऐश्वर्य है, समग्र वीर्य है, समग्र यश है, समग्र श्री है? हाँ, जिसके पास है वो है भगवान। और हमारे शास्त्र में उनका वर्णन ऐसे हुआ है, वो है एकम एव अद्वितीय परम पुरुष, जो है एक एवं अद्वितीय। अद्वितीय मतलब जिनका कोई दूसरा नहीं है, वो है परम पुरुष, परम पुरुष। तो पुरुष तो है जरूर, नहीं तो बाण तो पुरुष का द्योतक है। हाँ, अगर स्त्री होता तो क्या होता? भगवती हो जाती। हाँ, भगवती भी है। हाँ, भगवान का जो शक्ति है वो है भगवती। और यहां तो भगवान पुरुष, पुरुष का मतलब व्यक्ति है, वो कोई व्यक्ति है ना। तो बाण ऐसे भगवान के शब्द के द्वारा हमें पता चलता है जो एकम एव अद्वितीय परम पुरुष है वो है भगवान। और उन्होंने हर जीव के हृदय में विराजमान है, हर प्राणी के हृदय में विराजमान है। और वो जो हर जीव के हृदय में विराजमान जो उनका रूप है, उनका जो जो व्यक्तित्व है वो है परमात्मा। तो इसलिए अंतर है और अंतर नहीं। तो यह एक विचार हो सकता है कि परमात्मा और भगवान में ऐसा क्या अंतर है, इस बारे में एक घटना का याद आ रहा है। एक समय मैं श्रील प्रभुपाद के सामने बैठे थे, प्रभुपाद ऐसे अपना सेज में बैठे थे और मैं जमीन पर उनका पैर के सामने बैठा था, और पीछे का दीवार में एक चित्र था, एक पिक्चर था परमात्मा का। परमात्मा का रूप कैसे है? चतुर्भुज, चार बाहें, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए। तो मैं प्रभुपाद के पीछे वो पिक्चर को और देख रहा था, तो मैं तब नया नया था, उतना पुराना भक्त नहीं था, लगभग कोई महीना, 6-7 महीना होगा, 8 महीना इस्कॉन में ज्वाइन किया, भक्त बना था। तो मैं प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद भगवान क्या परमात्मा के रूप में, भगवान क्या परमात्मा के रूप में हर जीव का हृदय में विराजमान है? तो प्रभुपाद बोले, तब बोले, हाँ, बल्कि तुम्हारे हृदय में वो श्याम सुंदर, द्विभुज श्याम सुंदर के। मैंने पूछा था, हाँ, मेरा प्रश्न ये था, प्रभुपाद भगवान क्या चतुर्भुज परमात्मा के रूप में हर जीव के हृदय में विराजमान है? प्रभुपाद बोले, हाँ, पर तुम्हारे हृदय में उन्होंने दीभुज श्याम सुंदर के रूप में इसका मतलब ये है कि भक्त के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में नहीं, कृष्ण के रूप में, श्याम सुंदर के रूप में विराजमान है। क्यों? ये है परमात्मा और भगवान में अंतर। परमात्मा, परमात्मा कौन है? जब भगवान जीव के हृदय में साक्षी के रूप में विराज करते हैं, उपद्रष्टा अनुमानता, जब उपद्रष्टा जो दर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं, एक वृक्ष में दो पंक्षी, ये शरीर रूप वृक्ष में दो पंछी हैं, एक उस वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरा वृक्ष, दूसरा पंछी उस और दूसरा पंछी को फल, जो फल खाने वाला पंछी है उसको देख रहा है। तो शरीर का, शरीर के द्वारा जो कर्म फल हो रहा है उस फल को कौन भोग रहा है? आत्मा रूप पंछी, और उसको देख रहा है कौन? परमात्मा। पर साक्षी के रूप में उन्होंने देख रहे हैं, अब साक्षी के रूप में वे देख रहे हैं कि ये क्या, हम सब क्या कर रहे हैं, और अनुमंता अनुमति देते हैं, हम चाहते हैं, हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए, और उन्होंने देखते हैं कि हमको क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना चाहिए, ये अनुमोदन करते हैं। अनुमंता, उपद्रष्टा और अनुमंता के रूप में वे विराजमान है, अर्थात परमात्मा के रूप में वे निष्क्रिय हैं, क्रिया नहीं कर रहे हैं, खड़े होकर देख रहे हैं, बल्कि जब हम उनको प्यार करना शुरू करते हैं, भक्ति के माध्यम जब हम उनको प्यार करना शुरू करते हैं, तब और उन्होंने निष्क्रिय नहीं रह सकते हैं, तब वे सक्रिय हो जाते हैं। जब वे सक्रिय होते हैं तो यह है उनका भगवान स्वरूप। भक्तों, भगवान को क्या करते हैं? आम आदमी और भक्त में फर्क क्या है, अंतर क्या है? भक्त, भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब, भक्ति शब्द का अर्थ है भगवान के प्रति प्रेम। हमारा प्रेम जब हम भगवान को अर्पण करते हैं तो उस प्रेम को भक्ति कहा जाता है, और उस प्रेम का जो जो अभिव्यक्ति है उसे भक्ति कहा जाता है। वो प्रेम का अभिव्यक्ति क्या होता है? प्रेम का अभिव्यक्ति है सेवा। तो जब ऐसे भगवान के प्रति जब प्यार होता है, तब उन्होंने और पर निष्क्रिय रूप में परमात्मा के रूप में नहीं रहते हैं, तब वे सक्रिय भगवान के रूप में हमारे साथ प्यार के आदान प्रदान करना शुरू करते हैं। ये है परमात्मा और भगवान में अंतर। उनका और एक प्रकाश भी है, वो है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? उनका जो शक्ति जिसके कारण इस भौतिक जगत का प्रकाश हुआ है वो है ब्रह्म। वह आध्यात्मिक शक्ति जिसे ब्रह्म ज्योति कहा जाता है, इसका वर्णन, इसका ये तीन में जो अंतर है इसका वर्णन श्रीमद् भागवत में ऐसे हुआ है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते वदन्ति तत् तत्त्वविदस्तत्त्वं जज ज्ञानम अद्वयम्। जो ज्ञान अद्वय है, अद्वय का मतलब जिसका कोई दूसरा नहीं है, एक ही, केवल एक, केवल एक, इसका मतलब है अद्वयम्, अद्वय। जज ज्ञानम अद्वयम्, जो ज्ञान अद्वय है बल्कि उसका प्रकाश कैसे होता है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ब्रह्म परमात्मा और भगवान, इन इस ये तीन शब्द के द्वारा इसका वर्णन होता है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म है भगवान का शरीर का अंग कांति, अंग ज्योति। परमात्मा हर जीव के हृदय में उनका जो स्थिति वो है परमात्मा, और उनका स्वरूप में वे है भगवान। अच्छा, इसका भी वर्णन आगे ऐसा हो रहा है, ज्ञान के द्वारा जब हम ज्ञान के माध्यम वो अद्वैत तत्व को जानने का कोशिश करते हैं, तब उनका प्रकाश होता है ब्रह्म के रूप में। जब हम अष्टांग योग के द्वारा उनको अनुभव करना चाहते हैं, उपलब्धि करना चाहते हैं, तब उनका प्रकाश होता है परमात्मा के रूप में। और जब हम भक्ति के द्वारा उनसे प्यार का संपर्क स्थापन करते हैं, तब उनका प्रकाश होता है भगवान के रूप में। तो ऐसे ब्रह्म परमात्मा भगवान में एक दृष्टिकोण से अंतर है और दूसरे दृष्टिकोण से अंतर नहीं है। इसका भी एक सुंदर वर्णन ऐसे हुआ है कि हम जब घर में बैठे हैं, घर के अंदर बैठे हैं, तब हमारा सूर्य का दर्शन कैसा होता है? सूरज का दर्शन किरण से होता है। हम यहां बैठे हैं, हम क्या देख रहे हैं? सूरज का किरण के द्वारा हम सूरज को अनुभव कर रहे हैं। जब हम घर से निकल के बाहर से देखेंगे सूरज को, तब हम क्या देखेंगे? सूर्य मंडल को हम दर्शन करेंगे। हाँ, और जब हम सूर्य मंडल में अगर प्रवेश करने का मौका मिला तो हम क्या देखेंगे? तो वहां हम सूर्य देव को देखेंगे, सूर्य देव का पत्नी संगा को देखेंगे, सूर्य देव का और एक पत्नी छाया को देखेंगे, और सूर्य देव के साथ साथ जितने सारे उनके सेवक हैं, उनके दोस्तों हैं, उनके लड़का हैं, सबको हम देखेंगे। तो ये तीन दर्शन में एक ही सूर्य का दर्शन हो रहा है, बल्कि हमारा भिन्न दृष्टिकोण के कारण हम भिन्न रूप से उनको दर्शन करते हैं। इसका और एक वर्णन ऐसे किया गया है, जैसे आधुनिक जगत के विचार में अगर हम देखेंगे, हम सब स्टेशन में जाते हैं, ट्रेन जब पकड़ने को जाते हैं रात को, तो दूर से हम क्या देखते हैं? दूर से ट्रेन को जब आते देखते हैं, एक लाइट देखता है। हाँ, जब ट्रेन जब नजदीक आ जाता है तब हम ट्रेन को देखते हैं, और जब ट्रेन प्लेटफॉर्म में खड़ा हो जाता है, हम जब ट्रेन के कमरा में अंदर घुसते हैं, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं आदमी बैठे हुए हैं, सब कुछ देख रहे हैं। हाँ, एक ट्रेन को हम ऐसे भिन्न रूप से, हाँ, भिन्न भिन्न स्थिति के कारण हमें दर्शन हो रहा है। अच्छा, इसका और एक दृष्टांत ऐसे दिया जा सकता है, जैसे जो सोचिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, आम आदमी के लिए वो क्या है? मुख्यमंत्री है। बल्कि जब उन्होंने अपने दोस्तों के साथ रहते हैं तो दोस्तों ने उनको कैसे बोलते हैं? हे शिवराज, कैसे हो? है ना, हमारे लिए वो है मुख्यमंत्री, अपने दोस्तों के लिए वो है शिवराज। सिंह जी भी नहीं, चौहान भी नहीं, शिवराज। और जब उन्होंने, जब वे घर जाते हैं, तब उनके पत्नी के लिए, उनका पुत्र के लिए, उनका पिता माता के लिए उनका परिचय और दूसरा है। उनका लड़का उसको कैसे बोलते हैं? पिताजी या डैडी। और उनका माता कैसे बोलते हैं? बेटा, कैसे हो? तो ऐसे जो दर्शन, एक ही व्यक्ति का दर्शन भिन्न भिन्न स्थिति में भिन्न भिन्न रूप से होते हैं। तो ऐसे ही एक ही भगवान का दर्शन भिन्न भिन्न रूप से भिन्न भिन्न स्थिति से हो सकता है। ये है अंतर और समता, भेद अभेद। तो जब हम उनके साथ संपर्क जोड़ते हैं, हाँ हमको तो अब जल्दी जल्दी वापस जाना है मूल पॉइंट में जो चर्चा हम कर रहा था, हाँ क्योंकि और केवल 10 मिनट है बाकी। मूल प्रश्न क्या था? हरे कृष्ण महामंत्र से क्या होता है? हरे कृष्ण महामंत्र है एक प्रकार की प्रार्थना। ये प्रार्थना का उद्देश्य क्या है, प्रार्थना का अर्थ क्या है? हे सर्वाकर्षक, कृष्ण का मतलब क्या है? सबको जो आकर्षण करते हैं, कृष्णा, हरे कृष्णा, हे कृष्णा। और किसकी? हरे का मतलब क्या है? हरे का मतलब है हरा का संबोधन। हरा कौन है? हरा है राधा रानी। कोई अगर बड़े आदमी के पास हम सीधा जाना चाहते हैं तो मुश्किल हो जाता है। इतने बड़े आदमी ना, जैसे उनके पास अगर हम जाना चाहते हैं, बहुत तकलीफ उठाकर इतना यहाँ से परमिशन लाओ, वहाँ से परमिशन लाओ, कितने सारे परमिशन का जरूरत होता है। अगर उनके पत्नी को हम पहचानते हैं तो क्या होता है? तो उनकी माध्यम बहुत आसानी से तब हमको सेक्रेटरी वगैरह को ये करना नहीं हो तो शामद नहीं करना हो। अगर उनके पत्नी को हम पत्नी के माध्यम जाते हैं तो बहुत आसानी से हम उनके पास जा सकते हैं। तो भगवान के पास अगर हम जाना चाहते हैं, भगवान के साथ संपर्क जोड़ना चाहते हैं, तो किसके पास अपील करने से जल्दी जल्दी फायदा मिल जाएगा? राधा रानी। तो कृष्ण के पास हम, कृष्ण के और जब हम जाते हैं, राधा रानी के माध्यम जाते हैं। इसलिए राधा कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, नारायण के पास जाना है तो लक्ष्मी जी के माध्यम, ये आसान हो जाता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है उनके पास जाना। तो इसलिए हमारा ये है, हे राधा रानी, कृपा करके आप सर्वाकर्षक परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को सेवा करने का मौका दीजिए, उनकी सेवा में हमें अंश ग्रहण करने का अवसर दीजिए। तो ये है हमारा प्रार्थना। तो ये प्रार्थना, ऐसे जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या क्या होता है? राधा रानी तब क्या करेंगे? कृष्ण बहुत बिजी हैं, बल्कि राधा रानी बहुत कृपालु हैं। राधा रानी सुनते ही राधा रानी हमको बोलेंगे, ठीक है कोई फिक्र मत करो, सारे अरेंजमेंट मैं कर दूंगा। तो ऐसे ये हरे कृष्ण महामंत्र जपने से, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से कृष्ण के साथ हमारा संपर्क बन जाता है। तो हरे कृष्ण महामंत्र का चरम प्राप्ति क्या है? कृष्ण के साथ संपर्क बनना। कैसी संपर्क? प्यार की संपर्क। और ये संपर्क बनने से क्या होता है? ये संपर्क बनने से आप जो कुछ कह रहे थे सब कुछ हो जाता है, शांति मिल जाता है, सारे विघ्न दूर हो जाता है, मुक्ति मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है। जब भगवान के साथ हम संपर्क जोड़ लेते हैं तो भगवान क्या करते हैं? हम भगवान, हमारे साथ भगवान का संपर्क क्या है? भगवान कौन है? एक दृष्टिकोण से भगवान हमारे पिता हैं, परम पिता। भगवान हमारे सखा हैं, तमेव माता पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव। भगवान हमारे सब कुछ है, सब कुछ है। तो आप देखिए, ये जो सब कुछ जो है, ये सब कुछ हमारा बहुत गहरा संपर्क है। सोचिए अगर भगवान हमारा पिता है तो हम अगर हमारा पिता को शरण ले लिया, जो कोई मामूली इंसान नहीं है, जो सारे संसार के मालिक हैं, जो सर्वशक्तिमान है, जो सारे जगत को पालन कर रहे हैं, वो अगर हमारा पिता है और उनके साथ अगर हम संपर्क जोड़ लिया तो हमारा हाल कैसा होगा? हाँ, सारे समस्याएं का पूरा समाधान हो गया, पिता के पास चला गया, बस चलो अब और कोई चिंता नहीं है। हाँ, तो हरे कृष्ण महामंत्र जपने से ये होता है, भगवान के साथ हमारा संपर्क बन जाता है और भगवान के साथ संपर्क बनने से सारे समस्याएं का समाधान हो जाता है। और समस्याएं का समाधान के पश्चात क्या मिलता है? सारे समस्या का समाधान ही क्या हमारे जीवन का उद्देश्य है? नहीं, हमारे जीवन का असल उद्देश्य है मजा लूटना, आनंद। आनंद ही जीवन का उद्देश्य है। शांति, जब तक झंझट रहता है तब तक शांति उद्देश्य रहता है, जब झंझट निकल जाता है तब शांति मिल जाता है। बल्कि वही क्या झंझट से मुक्त होने ही क्या जीवन का अंतिम उद्देश्य है? नहीं। जैसे आप जब अकेला घर बड़ा आपका प्रासाद में रहते हैं तो आप बहुत शांति में रहते हैं, बल्कि जब आनंद प्राप्ति होना चाहते हैं तो क्या करते हैं? सब दोस्तों को सजनों को बुला के आप एक उत्सव मनाते हैं, है ना? तो अकेला हम शांति प्राप्त हो सकते हैं, बल्कि शांति के आगे बढ़कर है आनंद। तो भगवान के साथ संपर्क जोड़ने से हमें क्या असल लाभ क्या होता है? हमें आनंद प्राप्ति होता है। भगवान के साथ संपर्क जोड़ने से हमारा तीन लाभ होता है, सत, चित और आनंद। सत का मतलब नित्यत्व, भगवान के साथ संपर्क जोड़ने से और कभी मृत्यु नहीं होगा। हम सोचते हैं कि मृत्यु होने से हमको खत्म, हम खत्म हो जाते हैं, बल्कि हम और खत्म नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा नित्य है, आत्मा का कभी मृत्यु होता नहीं। तो भगवान का साथ संपर्क जोड़ने से ये सत मतलब नित्य अस्तित्व प्राप्ति होता है, चित पूर्ण चेतना पूर्ण ज्ञान प्राप्ति होता है, और आनंद नित्य आनंद प्राप्ति होता है। तो आप बोलिए, भगवान के साथ संपर्क जोड़ना जरूरी है? और भगवान के साथ हम संपर्क कैसे जोड़ सकते हैं? हरे 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 कृष्णा। बहुत अच्छा, देखिए कितना आसानी से हम भगवान के साथ संपर्क जोड़ सकते हैं, इसमें कोई कठिनाई है? जब तक हमारा जीवभा है ये बोलने में कुछ दिक्कत होता है? हरे कृष्णा आसानी से ही हो रहा है, बल्कि कभी कभी मुश्किल होता है। एक कहानी मैं बचपन में सुना था, यद्यपि ये वाल्मीकि रामायण का कहानी नहीं है, बल्कि वैसे कोई जैसे कुछ ऐसे बातें होता हैं जो शास्त्र में नहीं है परंतु लोक आख्यायिका में है, ऐसे कहा जाता है। ये नारद मुनि के साथ जब दस्यु रत्नाकर का संयोग हुआ था, और रत्नाकर जब समझ लिया कि वो बहुत गलत काम कर रहा है, ये दस्यु वृत्ति करके वो जो कर रहा है ये बहुत गलत हो रहा है, तब रत्नाकर ने नारद मुनि के पास आकर उनका पैर पर गिर के बोला कि आप मुझे उद्धार कीजिए, मैं तो समझ गया कि जो जितने सारे पाप मैं किया हूं इसके लिए हमें अनंत काल के लिए नरक में रहना होगा, तो आप हमें बताइए हम क्या, आप क्या कर रहे, कैसे हम इस स्थिति से उद्धार लाभ कर सकते हैं। तब नारद मुनि ने उनको बोला, ठीक है, तुम राम नाम जपते रहो। तब वाल्मीकि के मुंह से राम नाम नहीं निकला था, तब तो वाल्मीकि नहीं बना रत्नाकर था। तो मतलब क्या है, जो बहुत पापी है उसका मुंह में भगवान का नाम उच्चारण नहीं होता है। तो ये देखना, हाँ, कोशिश करके प्रैक्टिस करके देखना कि आसानी से नाम हो रहा है या नहीं। अगर होता है तो ठीक है, तो सारे समस्या का समाधान हो गया है। अगर नहीं हुआ तो तब तो मुश्किल हो गया है। तो फिर से देखिए, बोलिए आप सब, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। बहुत अच्छा। और जब हम ऐसे भगवान का नाम लेते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान हमें देख रहे हैं ना, भगवान देख रहे हैं ना, कि भगवान हमको भूल गए हैं ना, कि भगवान इतना बिजी है कि उनको देखने का अवकाश नहीं है। भगवान देख रहे हैं, हम सबको भगवान देख रहे हैं, क्योंकि भगवान कहां है, हमारा दिल में बैठे हुए हैं, वहां से देख रहे हैं, वहां से नहीं, भगवान यहां से देख रहे हैं। हर हर हम सब के हृदय में बैठ के भगवान देख रहे हैं। और भगवान खुद बोले हैं कि कलियुग का युग धर्म है ये हरि नाम कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण। तो ये निर्देश भगवान दिए हैं कि कलियुग के धर्म है नाम संकीर्तन, भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन। तो ये भगवान जब निर्देश दिए हैं, जब भगवान देखते हैं कि हम सब ये नाम लेते हैं, तो भगवान क्या बोलेंगे, भगवान क्या सोचेंगे, ये लड़का ये लड़की बहुत अच्छा है, मैं जो बोला है वो कर रहा है, तो भगवान हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, तब हमारे सारे प्राप्ति हो जाता है। ये हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से, कीर्तन करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान के साथ साथ राधा रानी बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान तो प्रसन्न होते हैं, राधा रानी हर्षित होती है, बहुत आनंदित होते हैं और बोलते हैं ठीक है चलो, तुमको मैं भगवान के पास ले जाऊंगा, भगवान के सेवा में तुमको मैं नियोग करूंगा।